जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी
श्री कृष्ण भगवान की चैतन्य महाप्रभु की शुभपाद की गौर प्रेमानंदे नमः विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश कारिणी ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्णा Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama.
Hare Rama, Hare Rama.
Rama, Rama, Hare Hare.
आप सबका स्वागत है इस्कान पंजाबी बाग से श्री कृष्ण बलराम श्री राधा राधिका रमन मंदिर के प्रांगण में सोमवार का भक्त समाज के सत्संग में। राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वन चारी, ये छोटा सा तीन लाइन का भजन है। इस्कान संस्था का रजिस्ट्रेशन 66 में हुआ। हाँ, कब हुआ? और ये भजन सत्संग से पहले गाने की शुरुआत 72 में हुई, 6 साल के बाद। ये भजन पहली बार प्रभुपाद जी ने गोरखपुर गीता प्रेस गोरखपुर में रुके हुए थे, हनुमान प्रसाद पोदार के निमंत्रण पे गए थे, गीता वाटिका में रुके थे और भक्त कुछ एक श्लोक उच्चारण कर रहे थे तो प्रभुपाद ने कहा आओ आपको नया भजन सिखाता हूं। और तब ये राधा माधव कुंज बिहारी ये भजन पहली बार गाया और उसके बाद ये नियम बन गया कि प्रवचन देने से पहले ये भजन गाना चाहिए। क्यों गाना चाहिए? आप जब ये भजन गाते हैं तो आपका भाव क्या होना चाहिए? इसमें तीन चीजें हैं जो वृंदावन में अभी भी वैसे की वैसे हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण था तब थे। बाकी स्थान तो कोई कहे कि यहां भगवान ने ये लीला की थी तो उसका आप कह सकते पता नहीं यहां थी कि नहीं थी, अब तो कोई कहे तो सुन रहे हैं ना। लेकिन ये तीन चीजें जो है आज भी वैसे ही हैं जैसे भगवान के समय में थी। एक गिरिराज गोवर्धन, एक जमुना जी, एक ब्रज की रज, ये तो वही है जो भगवान के समय में थी। इसमें तो कोई परिवर्तन आया नहीं है। गोवर्धन आज भी वही वहां पड़ा है, जमुना जी वहां आज भी है और ब्रज की रज भी ऐसे की ऐसे पड़ी है जिसके कण कण के ऊपर भगवान 84 कोस में बगैर जूता पाए घूमे हैं। इसलिए कई भक्त चप्पल नहीं पहनते ब्रज में सिर्फ इस भाव से कि कहीं उसी रज का एक कण कभी हमको स्पर्श कर जाए और हमारा काया पलट जाए और भगवान की प्रेम भक्ति मिल जाए, इस भाव से वहां घूमते रहते हैं। तो ये भजन गाने का हमारा भाव क्या है कि जब हम भगवान की कथा सुने तो हमारा मन वृंदावन का दृश्य अपने हृदय में उतारे। क्यों उतारे वृंदावन का दृश्य अपने हृदय में? इसलिए कि जहां वृंदावन होता है वहां कृष्ण होता है। तो हमारा हृदय वृंदावन होगा तो भगवान की कथा कृष्ण कथा के माध्यम से कृष्ण हमारे हृदय में आके प्रवेश करेंगे। तो हमारा हृदय वृंदावन बनाना, हृदय में थोड़ी देर के लिए वृंदावन की झांकी को बसाना है। ये जब भजन गाए राधा माधव कुंज बिहारी तो भगवान श्री राधा और माधव ये वृंदावन के कुंजन में विहार करते हैं। विहार करने का मतलब घूमना फिरना। कुंज किसको कहते हैं? हाँ, वृंदावन के वृक्ष जो हैं, वृंदावन के वृक्ष ऐसे ऊपर सीधे जाते नहीं है, थोड़े ऊपर जाने के बाद भगवान के चरणों से दूरी महसूस करते हैं इसलिए झुक के नीचे आ जाते हैं वापस। और जब वो झुक के नीचे आते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे कमरे बनते हैं, ऐसे 10 12 15 वृक्ष इकट्ठे होते हैं तो उसके अंदर एक महल बन जाता है। और वृंदा देवी और गोपियां उस वन के वृक्षों की कुंज के अंदर फूलों के फूलों से सजावट करते हैं, फूलों का कारपेट बिछाते हैं और हर एक चीज इतनी सुंदर उसको बनाते हैं, उसके अंदर राधा माधव विहार करते घूमते हैं और जगह जगह पे ऐसी कुंजें बनी हुई हैं ब्रज में। सबसे अच्छा ब्रज में ऐसी जगहें बहुत कम अब दिखती हैं, प्रायः तो सब कंक्रीट जंगल हो गया है, जगह जगह के ऊपर बड़ी बड़ी मार्बल की बिल्डिंगें बन रही है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी जगह है। वृंदावन में जाएंगे, एक बरसाना की कभी परिक्रमा करते हुए सांकली गली, जहां बहुत पतली गली है उससे पहले जहां से गुजरते हैं दोनों ओर से वृक्ष इतने सुंदर है कि आप संसार को भूल जाते हैं, वहां जाने के बाद आपको दुनिया दिखती नहीं है। तो कुछ ऐसे अभी बहुत कुंज और वन सुरक्षित हैं ब्रज में, जहां भगवान नित्य लीला करते रहते हैं। राधा माधव कुंज बिहारी, कैसा है कुंज बिहारी? गोपीजन वल्लभ, वल्लभ का मतलब होता है प्रेमी, गोपियों का प्रेमी है, गोपियां उससे प्रेम करती हैं और हर समय भगवान के ही चिंतन में रहती है। ये हमको ये याद दिलाना है कि थोड़ी देर के लिए कथा में हमारा मन भी उनकी तरह भगवान में आविष्ट हो जाए तो हम भाग्यशाली बन जाए। हर समय नहीं हो तो कम से कम एक घंटे के लिए तो हम मन को भगवान से प्रेम करने वाला बना लें। तो भगवान गोपियों से प्रेम करते हैं, बोला हां प्रेम करते हैं, बस खेलते हैं, बोला हां खेलते हैं। गोपी जन वल्लभ गिरीवर धारी, केवल प्रेम नहीं करते हैं अपने भक्तों से, भक्तों के ऊपर संकट आता है तो पहाड़ भी हाथ के ऊपर उठा लेते हैं उनकी रक्षा करने के लिए। गोवर्धन पर्वत को अपने उल्टे हाथ के छोटी उंगली के ऊपर धारण किया था अपने गोपी गोप जनों की रक्षा करने के लिए। तो जिससे प्रेम करता है उसकी रक्षा भी करता है, आंख जैसे पलकें जैसे आंख की रक्षा करते हैं करती हैं, उससे भी निकट से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करता है। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गिरिराज पहाड़ उठाया। दुनिया में तो लोग बहुत कहते हैं संकट आएगा तुम्हारे ऊपर हम तो पहाड़ उठा लेंगे, आज तक किसी ने आज तक उठाया नहीं है पहाड़, भगवान ने पहाड़ उठाया भक्तों का संकट दूर करने के लिए। तो ऐसा भक्तों का प्रेमी भगवान है जो भक्तों के संकट में पहाड़ उठा सकता है, उसका शरण छोड़ के और कहां जाएंगे, किसके पास जाएं? ये भाव हृदय में, ये कथा सुनते के समय ये भाव हृदय में अपने पैदा करने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा दयालु है भगवान। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, ब्रज के अंदर यशोदा नंदन कृष्ण रहता है। द्वारका मथुरा में वासुदेव कृष्ण जाता है, वासुदेव कृष्ण जो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ था कंस के कारागर में, वो तो मथुरा द्वारका में और कुरुक्षेत्र में जाता है, हस्तिनापुर में भी आता है, लेकिन यशोदा नंदन कृष्ण ब्रज से बाहर जाता नहीं है, एक कदम भी एक चरण भी ब्रज की सीमा से बाहर नहीं रखता है। क्या करता है वहां बैठकर? ब्रज जन रंजन, जो ब्रज के जन हैं, जो ब्रज में रहने वाले ब्रजवासी भगवान के भक्त हैं, उनका रंजन करता है। रंजन का मतलब उनको आनंद देता है, उनको आनंद देता है, इसलिए वहां रहता है, क्योंकि ब्रजवासी उसके बगैर रह नहीं सकते, वो नहीं रहेगा तो ब्रजवासी नहीं रह सकते हैं। इसलिए हर समय भगवान ब्रज में विराजते हैं। कौन? यशोदा नंदन। कहां विराजते हैं? जमुना तीर वनचारी, जमुना के दोनों किनारा 12 वन हैं, उन वन और उपवन में हर समय विचरण करते रहते हैं, हर समय विचरण 24 घंटे विचरण करते रहते हैं। तो भगवान हर समय विचरण करते रहते हैं, कब भगवान भक्तों को आवश्यकता पड़ जाए तो उन भक्तों का इच्छा की पूर्ति करे, भक्त वांछा पूरी करे, बिना और नहीं कोई कृत। चेतना महाप्रभु कहते हैं भगवान को, कृष्ण को, भगवान को अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के अलावा और कोई काम है ही नहीं। वो प्रतीक्षा करते रहते हैं कि मेरे भक्त की इच्छा कब पूरी करने का मौका मिलेगा। चेतना महाप्रभु कृष्ण के विषय में कहते हैं भक्त वांछा पूरी करे और नहीं करते, कृष्ण असमर्थ नहीं। जमुना तीर वन चारे, तो भक्त की वांछा पूरी करते तो हमको क्या बनना पड़ेगा, भक्त। कृष्ण भावना अमृत संघ आंदोलन का उद्देश्य लोगों की भावना को कृष्ण भावना भावित करना है। कृष्ण भक्त बनाने के लिए कृष्ण भक्ति की शिक्षा देनी है। तो हमारा आपका यहां आने का उद्देश्य क्या है, हमको भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनना है। ये कैसे बनना है, भगवान के भक्तों के संग के द्वारा। तो जो भगवान के भक्त जिनका हमको संग करना है वो कैसे होते हैं, तो हमको भगवान के अपने मुख से कहे हुए अपने भक्ति योग वाले 12वें अध्याय भगवत गीता का ठीक तरह से अध्ययन करना पड़ेगा। उसमें भक्त को क्या करना चाहिए, भक्त के कैसे गुण भगवान को बहुत प्रिय लगते हैं, इस अध्याय में भगवान 10 बार कहा है ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। अर्थात हमको भक्त बनना है कि कृष्ण को प्रिय कैसे लगेंगे, तो वो गुण अपने अंदर, वो गुण अपने अंदर पैदा करने हैं, उन गुणों को अपने अंदर संचार करना है। ये हमारे यहां आने का जीवन पूरे का, ये कब तक हो जाएगा, ये पूरे जिंदगी जब तक हम जीवित हैं ये हमारा असाइनमेंट है, ये हमारा कार्य है कि हमको इस भक्ति के काम में लगा रहना है। धैर्य के साथ, उत्साह और धैर्य दोनों, उत्साह होना चाहिए लेकिन धैर्य गंवाना नहीं चाहिए। 20 साल हो गए अभी तक कुछ नहीं हुआ, नहीं कोई 20 साल बहुत कम है, 20 जन्म में भी भगवान का प्रेम मिल जाए तो सस्ता सौदा है। तो धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। अब मनोविज्ञान भगवत गीता का देखिए, भगवत गीता के रणभूमि में अर्जुन रथी, कृष्ण सारथी। रथी बड़ा होता है, सारथी छोटा होता है, संसार की दृष्टि से सारथी छोटा होता है। सरथी रथ के साथ चलने वाला, लेकिन रथी का मतलब रथ का मालिक। तो ऊपर के स्थान के ऊपर अर्जुन बैठा है, और भगवत गीता में आप देखेंगे कि अर्जुन भगवान को आदेश करता है, सेन्योर उभ्योर मध्य रथ स्थाप्य में अच्युत, हे अच्युत दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा करो। भगवान ने मुस्कुराते हुए पीछे देखा, अच्छा है भक्त आज आदेश दे रहा है, मेरा भाग है, मेरे को भक्त की सेवा करने का मौका मिलेगा। तो बीच में क्यों जाना चाहते हैं, तो पांडवों के पक्ष का है ना, तो युधिष्ठिर के राज के लिए लड़ाई करेगा ना, तो बीच में क्यों जाना चाहते हैं। पर निरीक्षे हम, मैं देखना चाहता हूं। बोला किसको, दुर्बुधे दुर्योधन, दुर्बुद्धि दुर्योधन के संग में कौन आया है। अच्छी बात है, देखना चाहते हो, आ गया है, चलो। भगवान ने घोड़ों की बाग उठाई, कहां जाके खड़ा कर दिया। अब भगवान बड़ा, अब भगवान ने कहा देखो ये अपने आप को समझता है कि मैं बुद्धिमान हूं, दुर्योधन के साथी सब दुर्बुद्धि है और मैं देखना चाहता हूं तो इसकी बुद्धि देखूं कैसी है। अब अर्जुन की बुद्धि देखें तो सही है कैसी। भगवान ने कहां जाके रथ खड़ा किया, भीषम द्रोण पर मुक्ताम सर्वेशाम च महीक्षताम। भीषम और द्रोण के सामने रथ खड़ा किया और फिर ऐसे उंगली से इशारा किया, पश्येताम कुरुनीति। अर्जुन पश्येताम, देखो कुरुनीति, ये तुम्हारे खानदान के सारे खड़े, तुम्हारे अपने कुल के हैं। बस भगवान ये कहकर चुप हो गए। अब अर्जुन कहता अरे ये तो मेरे अपने हैं, ये भाई है, बंधु है, पुत्र पोत्र स्वाला साला स्वसर सुहृद। भगवान कहते हैं अभी तुम्हारी बुद्धि थी कि दुर्बुद्धि दुर्योधन, अभी तुम्हारे अपने हो गए। तुम्हारी बुद्धि बड़ी मजेदार है, अभी तुम्हारी बहुत अच्छी स्थिर बुद्धि लग रही है ना। हाँ देखो कैसे थोड़ी देर पहले कहता दुर्बुद्धि दुर्योधन का, देखूं तो सही किसको मेरे को मारू, अभी कहता ये तो मेरे सगे संबंधी है, मैं इसको कैसे मारू। अरे बड़े अच्छे समझदार रहे थे, नहीं, आप नहीं समझ रहे। अभी क्या कर, तर्क दे रहा है, युक्ति कर रहा है, शास्त्र को बता रहा है। अरे शास्त्र ने कहा है ना कुल नाश हो जाएगा, कुल धर्म नाश हो जाएगा, मैं तो ये युद्ध नहीं करूंगा। थोड़ी देर पहले तुमने कहा था मैं युद्ध करूंगा और मेरे को सारथी बना के लाया, अब मुझे ही समझा रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरे अपने हैं, तो मैं पराया हूं, मेरे को क्या तुम लाए हो या। तो भगवान देख रहे हैं उसको। इंसान इस दुनिया के अंदर हमेशा अपने आप को बुद्धिमान समझता है और भगवान के पास मंदिर में आकर तो मैं ये काम करने जा रहा हूं, आप कृपा करके मेरी सहायता कीजिए। भगवान ठीक है कोई बात नहीं। दो दिन के बाद आ गया, बोला पहले मैंने कहा था वो मेरे गलत था, अब जो मैं करने जाता हूं इसकी मेरी सहायता कीजिए। तो निर्णय तो करके भाई, तुम्हें करना क्या है, मेरे से सहायता मांग दे, तू तो पहले अपनी बुद्धि को ठीक करो ना। हम सबकी ये अवस्था है, हम अपना प्लान भगवान के सर के ऊपर थोपते कि तुम हमारी मदद इसमें करो। और अर्जुन की स्थिति दूसरे अध्याय में आते आते ऐसी हो जाती है कि अब मुझे पता नहीं लग रहा है कि मैं क्या करूं, मेरी बुद्धि मोहित हो गई, मैं क्या करूं, मुझे पता नहीं है। अब मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका शरण लेता हूं, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे पता नहीं लग रहा है। अब सारथी महान हो गया, रथी छोटा हो गया, सारथी बड़ा हो गया, सारथी गुरु हो गया और रथी शिष्य हो गया। खेल उल्टा हो गया, हो गया ना उल्टा दूसरे अध्याय में खेल। और जब ये खेल उल्टा हुआ तब अर्जुन की बुद्धि को भगवान बुद्धि योग में परिवर्तित करना चाहते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि डावाडोल हो रही है, कभी इस बात को अच्छा मानती है, कभी उस बात को अच्छा मानती है। अब तुम बुद्धि योगी बनो। दूसरे अध्याय में कहते हैं बुद्धि योग की बात कर रहा हूं, आइयो आपको बुद्धि योग सिखाता हूं। और तब अर्जुन पूछता है स्थिर बुद्धि कहते हैं किसको, स्थित प्रज्ञ का भाषा। अच्छा ऐसी स्थिर बुद्धि होती है। और तीसरा अध्याय शुरू होने से पहले फिर भगवान कहते हैं आप तो मेरी बुद्धि को व्यामेश्रेण वाक्यन बुद्धि में मोहित, मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हो, आपके भाषा ऐसे लगती है कि दो माना निकल रही है। अभी फिर अपनी बुद्धि को पकड़ के बैठ गया, भगवान से पूछते हुए फिर भी कहता है अरे आप हमारी बुद्धि को डामालोर कर रहे हैं, ऐसे मत कीजिए। तो इसका मतलब अपनी बुद्धि को अभी तक छोड़ नहीं रहा। तो भगवान अर्जुन की बुद्धि को स्थिर करने के लिए, अर्जुन को भक्त बनाने के लिए भगवद गीता पूरी कहने के लिए, कहने की भगवान को आवश्यकता पड़ गई। और भगवत गीता जब पूरी होती है, पहले अर्जुन कहता था मैं कहता हूं ऐसे करो, और फिर अर्जुन कहता है करिष्य वचनम तब, अब आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। ये है भगवत गीता का सार। आप अभी तक रोज आते हैं मंदिर में, भगवान हमारा ये काम पूरा कर देना। तो अर्जुन की तरह आप रोज काम बदलते रहते हो और भगवान भी लिस्ट बना के फाइल करता रहता है, बोला आखिर में आएगा तब, जब आएगा और कहेगा अब आपकी जो इच्छा है वो करो तब मैं काम करूंगा। गीता का एंड क्या है, क्या कहता है अंत में अर्जुन, क्या कहता है ना? ये तो संजय कहता है, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तव प्रसादाद अच्युत। अच्युत आपकी कृपा से मेरी मोह नष्ट हो गया। ग्यारहवें अध्याय में आते आते अर्जुन ने बड़ी बुद्धि मानी, फिर अपनी बुद्धि का उपयोग किया, बोला मद अनुग्रहाय परमम गुह्यम अध्यात्मम, आपने मेरे ऊपर बहुत अनुग्रह किया या मुझे आध्यात्मिक ज्ञान, विगतो मोह, मेरा मोह चला गया। भगवान फिर मुस्कुराया, चला गया फिर वापस आएगा तो क्या करेंगे, अभी तुम्हारा गया है ना मोह, तो वापस आ जाएगा क्या पता। तब आखिर में जब कहा नष्टो मोह, भगवान कहे अब ठीक है, अब समझ गया। नष्टो मोह जब तक नहीं कहा तब तक भगवान की शिक्षा जारी रही, अपने मुख से आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। करिष्ये वचनम, अब मैं आपके वचन जो आप कहोगे उसका पालन करूंगा। तो अब यह प्रश्न उठता है कि भगवान को हम किस दिन कहेंगे कि आप जो चाहें वो हम, आप आज्ञा दो हम करें, उस दिन समझ लो कि हमने भगवद गीता समझ ली। जिस दिन हमारा यह संकल्प बन जाए कि भगवान जो आप इच्छा करेंगे वो मैं पूरी करूंगा, आपकी इच्छा पूरी करूंगा, इसके लिए मैं भक्त बनाऊं, मेरी इच्छा आप पूरी करो इसके लिए भक्त नहीं बनाऊं। दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों मंदिर हैं और उसके अंदर करोड़ों अरबे अरबों अरब लोग जाते हैं रोज, लाखों करोड़ मंदिर है और करोड़ और अरब लोग उस मंदिरों के अंदर जाते हैं, लेकिन सभी अपना प्लान ले जाते हैं और भगवान को कहते हैं आप ये काम कीजिए। बहुत कम न के बराबर मंदिर है जिसमें भक्त जाके कहता है भगवान आप बताइए आपके लिए मैं क्या करूं, आपकी क्या इच्छा है मैं करूं, ऐसा कहने वाला न के बराबर भी नहीं है। ये सत्य है कि नहीं है, ये सत्य है कि नहीं है, थोड़ा अंदर जाके देखो सत्य है कि नहीं है। इसका अर्थ ये है कि भगवद गीता को समझा किसी ने नहीं है। भगवद गीता का ये सार है कि हम जाके भगवान से कहें कि आप कृपा कीजिए संसार के मोह से मुक्त हूं, आपकी इच्छा के अनुसार मैं कर्म करूं, आपकी इच्छाओं के अनुसार मैं कार्य करूं, वो दिन भगवद गीता समझने की सार्थकता का दिन है। ग्यारहवें अध्याय के अंत में अंतिम श्लोक ग्यारहवें अध्याय का, पचपन श्लोक ग्यारहवें अध्याय का, उसमें पांच बातें हैं। ये भक्ति का सूत्र है। सूत्र का अर्थ क्या होता है? कोई चीज गागर में सागर को डाल के दे दो, कैप्सूल के अंदर दवाई डाल के दे दो और अचानक उसको लगे कि अरे ये तो बड़ा काम का है, बताओ तो इसमें डाला क्या था, उसका नुस्खा पूरा बताओ हमको, जब कोई पूछे तो फिर उसको खोल के समझाना। ये शिक्षा की शैली भगवद गीता की है, कृष्ण की शिक्षा की शैली ये है और साधु संतों की शिक्षा की शैली भी ये है। जिज्ञासु को थोड़ा सा संक्षेप में सूत्र बताते हैं, जिज्ञासु में अगर जिज्ञासा जागती है और पूछने का प्रयास करता है, परिप्रश्नेन अगर पूछता है तो उसको विस्तार से बताते हैं। भगवद गीता का दूसरा अध्याय क्या है? गीता सार बता दिया कृष्ण ने, अब अर्जुन ने प्रश्न पूछा तो गीता का भगवान ने क्या किया? विस्तार। और सिखाने वाले की दूसरी ये विशेषता है, जब बता के पूरा किया तो फिर सारांश दोबारा देना है। अठारहवां अध्याय क्या है? गीता का समरी, समरी सारांश, फिर बहुत बताया समझा दिया लेकिन फिर इसमें विशेष क्या है एक बार उसका निर्णय निकाल के दे देना चाहिए। तो हर बाप को बेटे को ऐसे शिक्षा देनी चाहिए, हर अध्यापक को अपने स्टूडेंट को ऐसे शिक्षा देनी चाहिए, गुरु को शिष्य को, ये प्रणाली शिक्षा की है कि जब तक स्वयं नहीं पूछेगा तब तक उसको वो चीज कभी दिमाग में बैठेगी ही नहीं। उसको वो हृदय से लगा नहीं सकते जब तक स्वयं पूछेगा नहीं तब तक, लेकिन उसमें जिज्ञासा जरूर पैदा करनी चाहिए। तो 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक भक्ति का सूत्र है और 12वें अध्याय का पहला श्लोक अर्जुन की जिज्ञासा है। 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक क्या है? भगवान कहते हैं मत कर्म कर्ण मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह समेति पांडव। मत कर्म कर्ण, मेरे लिए काम करो। मत कर्म कर्ण, तीन चीजें भगवान अपने लिए कहते हैं, मेरे लिए। कृष्ण कहते हैं मत कर्म कर्ण, मेरे लिए काम करो। मत परम, जीवन में सबसे उत्कृष्ट चीज मुझको समझो, आश्रय मेरा लो, श्रद्धा और विश्वास तुम्हारी मेरे ऊपर होनी चाहिए। मत परम। मद भक्त, भक्त मेरे बनो। शरीर से काम मेरे लिए करो। झाड़ू निकालते हो तो इस विचार से निकालो कि यहां मंदिर में जो लोग आएंगे उसके लिए रास्ता साफ होगा। तो ये भगवान की मत कर्म हो गया। मन और बुद्धि, मन से ये संकल्प कर लो कि भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है। मत परम, भगवान ही सबसे उत्कृष्ट है। और बुद्धि से ये विश्वास कर लो कि इसी का ही सहारा लेना है और किसी का सहारा कभी काम आने वाला नहीं। तो शरीर से कम भगवान के लिए काम करना है, मन और बुद्धि से भगवान को ही सर्वस्व मानकर उसमें उसके ऊपर पूर्ण विश्वास रख के उसका आश्रय लेना है। और फिर मद भक्त का अर्थ है हृदय से प्रेम भी भगवान से करो। भक्त का अर्थ है प्रेम करना। तो हृदय से प्रेम करो, मन से विश्वास करो और शरीर से काम करो। ऐसे क्या होता है, आप किसी के पास काम करते हैं ना, किसी ऑफिस में नौकरी करते हैं ना, तो काम किसके लिए करते हैं? सेठ के लिए। लेकिन प्रेम किससे करते हैं? अपने बच्चों से। काम सेठ के लिए, प्रेम बच्चों से। भगवान को यह पसंद नहीं है कि काम करो, काम भी मेरे लिए करो तो प्रेम भी मुझसे करो। काम मेरे लिए करो और प्रेम दूसरे से करो, ये मुझे पसंद नहीं है। काम भी मेरे लिए करो, प्रेम भी मुझसे करो। अब हम अपने आप को देखेंगे, हम किसके लिए काम करते हैं प्रायः, किसके लिए हम काम करते हैं? अपने लिए, परिवार के लिए, दुकान के लिए, मकान के लिए। और काम अपने लिए करते हैं, प्रेम भी अपनों से करते हैं, लेकिन भार सारा भगवान के ऊपर डालते हैं कि ये आप सब करते रहना है? तीन चीजें भगवान ने अपने लिए की, कही दो चीजें संसार के लिए कही। भक्ति का सूत्र में तीन चीजें भगवान के लिए, मन कर्म हृदय चित्त, सब भगवान। चित्त से, हृदय से भगवान को प्रेम करना, मन से भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास रखना, श्रद्धा रखना, आश्रय उनका लेना, उसको ही सर्व मत परम। मतलब परम का मतलब सबसे उत्कृष्ट कोई चीज है कि उसके बाद कुछ भी नहीं है, वो भगवान को मान लेना। तीस दुनिया के लिए दो चीजें क्या बोलिए? संग वर्जित। वर्जित का मतलब छोड़ना, संग का मतलब आसक्ति। संग वर्जित, जो चीजें भगवान की भक्ति करने में बाधा डालती हैं उनका संग छोड़ दो, उनका संग त्याग करो। प्रभुपाद जी ने भावार्थ में इनको लिखा है कर्मी ज्ञानी आदि के संग से दूर रहो। संग वर्जित का अर्थ जो भक्ति नहीं करना चाहते हैं अथवा आपकी भक्ति के रास्ते में बाधा पड़ते हैं उनसे संग मत करो। तो इससे एक भाव ये उत्पन्न होता है, तो उसको हम उसका तिरस्कार करें, उससे द्वेष करें, उसके प्रति घृणा करें, तब एकदम भगवान कहते हैं निर्वैर सर्वभूतेषु। बड़ी सावधानी भी साथ में बताते हैं, ये बहुत बड़ा सूक्ष्म, बहुत ये बहुत वो एक कवि बहुत हमारे पास सिंध में हुए, उसकी कविता में है, हाथ पांव बांध कर तुमको तालाब में डाल रहे हैं और कहते हैं कि तुम कपड़े मत भिगाना। ये बहुत बड़ी विशेषता है, तालाब में पानी में फेंक रहे हैं, हाथ पांव भी बांध रहे हैं, लेकिन ऊपर से कह रहे हैं कपड़े मत भिगाना। तो ये बुद्धिमता बहुत सूक्ष्म बुद्धि है। क्या संग वर्जित है, संग मत करो, द्वेष भी मत करो, घृणा भी मत करो, निर्वैर सर्वभूतेषु, सब प्राणियों से निर्वैर, वैर मत करो किसी से। वैर करोगे तो क्या होगा, जिससे वैर करोगे वो तुम्हारे हृदय में आके बैठ जाएगा, वो हर समय तुम्हारे मन के ऊपर वही छाया रहेगा, तो भगवान के लिए जगह कहां बचेगी। जिससे वैर करते हैं अथवा जिससे आपकी थोड़ी ईर्ष्या हो जाती है, वही तो सारा दिन आपके मन के ऊपर चल रही है, वही तो मन के ऊपर घूमता रहता कि नहीं रहता है? ये सत्य है कि नहीं है भाई? निर्वैर, किसी से वैर मत करो। वैर करने का मतलब है जिससे तुम वैर करते हो उसको अपने दिल में जगह दे रहे हो। जिसको तुम आंखों से देखना नहीं चाहते हो उसको तुम अपनी दिल में जगह क्यों देते हो? मूर्खता नहीं है ये बड़ी? सो निकाल दो। निर्वैर सर्वभूतेषु, वैर मत कर, संग भी मत करना, वैर भी मत करना। बंदरों के लिए प्रभुपाद जी कहा करते थे वृंदावन में, इनकी ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, इनसे दोस्ती भी मत करना, दुश्मनी भी मत करना, ये दोस्त नहीं बन सकते। संग वर्जित निर्वैर, ये संसार के लिए ऐसी दो बातें हैं जिसको समझने में बहुत समय लगेगा। तो तीन भक्ति के सूत्र हैं, दो संसार में जीने की कला है। पदम पत्रम इवाम बसा, कैसे रहो? पदम पत्रम इवाम बसा, जैसे कमल का पता जल में होते हुए भी जल का स्पर्श नहीं करता, रहता जल में है लेकिन उसके ऊपर जल टिकता नहीं है। कभी देखा है इसका आपने? पानी का कतरा डाल के देखा है कमल के पत्ते के ऊपर, एकदम जैसे जैसे मर्क्यूरी होती है ना, ऐसे चला जाएगा, उसके ऊपर रुक नहीं सकता है। तो हमारे को ऐसे कमल की पत्ते की तरह संसार में रहना है, संग नहीं करना है, रहना संसार में और संसार से संग नहीं करना है, और वैर भी नहीं करना है। वैर करने से फिर बात के, वैर करने से भगवान के लिए जगह नहीं बचेगी, जिसे वैर करेंगे वो दिल में आके बैठ जाएगा। हमको तो किसी और को बिठाना नहीं है भगवान के अलावा दिल में, इसलिए वैर नहीं करना है। तो ये भक्ति का सूत्र है। इस श्लोक को सुनने के बाद अर्जुन प्रश्न पूछता है, 12वें अध्याय का पहला श्लोक प्रश्न है अर्जुन का। इस श्लोक का भावार्थ प्रभुपाद ने बहुत लंबा लिखा है, 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक का भावार्थ ठीक तरह पढ़ना चाहिए, जिसमें भगवान लिखा मत कर्म के लिए लिखा है बहुत कुछ, भगवान के लिए मंदिर बनाना, भगवान के लिए बगीचा लगाना, भगवान के लिए सब्जी लगाना, ये मत कर्म में आता है। भगवान को भोग लगाना, भगवान के मंदिर का झाड़ू निकालना, ये मत कर्म है, भगवान के लिए कर्म है ये सब। अपने लिए घर बनाना ये तो हो गई आसक्ति, लेकिन बहुत बड़ा विशाल मंदिर बनाना, भगवान को विराजमान करके और कोने में घर बना, अपना कमरा बनाना और भगवान की सेवा में लगना, ये मत कर्म हो गया, ये भगवान के लिए कर्म हो गया। तो मत कर्म के ऊपर प्रभुपाद ने बहुत ज्यादा लिखा है। मत परमो, आप किसको मानते हैं, आपका सबसे विशेष आपके लिए जीवन में कौन है, जरा ढूंढो कि आपके लिए आज के दिन में विशेष कौन है जीवन में। धन है, पत्नी है, पति है, भाई है, दुकान है, मकान है, कौन है विशेष आज के दिन आपके दिन में? जो है उसकी जगह पे भगवान को विशेष बना दो, और बाकी जो है वो भगवान के दिए हुए आपको कुछ उपहार है जो भगवान की सेवा में लगाने हैं। वो सब उन सबको ठीक तरह से देखना है, लेकिन भगवान की दिया हुआ मानकर भगवान की सेवा में लगाना, ये भगवान के उपहार हैं। लेकिन विशेष जीवन में भगवान है जिसने ये सब दिए हैं, जिसने दिए हैं उसको हृदय में रखना है ना, जिसने दिए हैं उसको हृदय में रखना है, जो दिया है उसको नहीं रखना है। उसको इसलिए देखभाल उसकी करनी है कि भगवान का उपहार है, उसने ये मुझे दिया है। मत परमो मत भक्त, प्रेम भी मुझसे कर दो। हम प्रेम किससे करते हैं दुनिया में इस वक्त? इस वक्त हमारा प्रेम कहां बटा हुआ है? हमारा प्रेम बिखरा हुआ है संसार में, लेकिन प्रेम ये है ही नहीं। दो शब्द हैं, दिन रात का दोनों में अंतर है। भक्ति शब्द जहां आएगा उसके अंदर प्रेम समाया हुआ है। भक्ति का मतलब ही प्रेम भक्ति है, भक्ति मतलब प्रेम भक्ति, प्रेम पूर्वक सेवा। भक्ति का अर्थ है प्रेम पूर्वक सेवा। सेवा तो करनी है लेकिन प्रेम के साथ, मजबूरी में नहीं। शरणागति शब्द जो है, भक्ति शरणागति से शुरू होती है, और शरणागति किसकी आदमी करेगा? जिससे प्रेम करेगा उसकी शरणागति करेगा। इस संसार में जिससे आप प्रेम करते हो उसका ही शरण लेते हो, उसके ही आज्ञाकारी बनते हो, उसके लिए सब कुछ करते हो। तो प्रेम होगा तब शरणागति होगी, नहीं तो हो नहीं सकेगी। नहीं तो सरकार शरणागति आर्टिफिशियल हो जाएगी। इसलिए अंग्रेजी ट्रांसलेशन शरणागति की सरेंडर एप्रोप्रिएट नहीं है। सरेंडर का मतलब है कोई डंडा उठाए तो हाथ उठा लो। तो सरेंडर और शरणागति में बहुत बड़ा दिन रात का अंतर है। ये सरेंडर शब्द अंग्रेजी में जो है ये उसका संस्कृत के शरणागति का पर्यायवाची नहीं है। शरणागति वॉलंटरी होती है, अपनी इच्छा से होती है, और प्रेम जहां होता है वहीं होती है। अब देखिएगा जीवन में जहां प्रेम होता है वहां शरणागति होती है। संसार में प्रेम के बगैर शरणागति नहीं होगी। प्रेम होगा तो शरणागति होगी। तो भगवान जब कहते हैं सर्वधर्मान परिचय माम एकम शरणम भेजा, इसका अर्थ है मुझसे प्रेम करोगे तभी मुझसे मेरा शरण। इसलिए इससे पहले वाले श्लोक में कहा है भव मत भक्तो, फिर कहा है बाद में कहा है कि मेरा शरण लो। पहले मत भक्त कहा है, उसके बाद कहा है सर्वधर्मान पर माम एकम शरणम, माम एकम शरण उसके बाद वाला श्लोक है। तो प्रेम होगा तो शरणागति होगी। इसलिए कृष्ण को वापस शरणागति सिखाने के लिए, कृष्ण प्रेम देने के लिए चेतन महाप्रभु के रूप में आना पड़ा। कृष्ण प्रेम देने के लिए, क्योंकि कृष्ण प्रेम पे करे शुभ के दिए के बना शरणागति हो ही नहीं सकती। यही कारण है ना, गोलोक में बैठ के कृष्ण विचार करता है मैं तो भगवत गीता में कह के आया हूं सर्वधर्मान परिचय माम एकम शरणम ब्रज, एक अकेला मेरा शरण लो माम एकम शरणम ब्रज, लेकिन मैंने सिखाया तो नहीं है कैसे मेरा शरण लो। मैं उनको प्रैक्टिकल सिखा के तो आया नहीं हूं, तो मेरे को जाके सिखाना पड़ेगा, और कौन सिखाएगा? लेकिन शरण कैसे लेंगे लोग मेरा? जब मुझसे प्रेम करेंगे तब मेरा शरण लेंगे ना। तो चेतन महाप्रभु क्या करने आए, हम क्या प्रार्थना बोलते हैं? कृष्ण प्रेम प्रदायते, वो कृष्ण प्रेम देने के लिए आए। कृष्ण प्रेम से कृष्ण शरणागति हो, इसलिए भक्ति का अर्थ होता है कृष्ण प्रेम। तो हम कह रहे थे दो शब्द हैं प्रेम और काम, दोनों के अंदर अंतर, दोनों के अंदर अंतर कितना है, फर्क कितना है? एक लोहा है और दूसरा सोना है। लोहे और सोने के भाव में कितना अंतर है, है ना? लोहा लोहा तो कुंटल के हिसाब, मन के हिसाब से लिया जाता है, और सोना ग्राम के हिसाब से लिया जाता है। तो ग्राम और कुंटल में कितना अंतर है? इतना दोनों में अंतर है, दिन और रात का अंतर है। अपनी इंद्रिय तृप्ति काम नाम, काम का अर्थ है अपनी इंद्रिय तृप्ति। इस भक्त से मुझे क्या फायदा होगा, मुझे क्या सुख मिलेगा, ये हुआ काम। कृष्ण इंद्रिय तृप्ति नाम प्रेम। प्रेम का अर्थ है अगर मैं इस भक्त से प्रेम करता हूं तो मैं इसको कैसे सुखी करूं। दोनों में दिन रात का अंतर है ना। मुझे सुख क्या मिलेगा इससे, काम। मैं इसको सुखी कैसे करूं, प्रेम। इस दुनिया में मां नवजात बालक से प्रेम करती है, अब तो कहना पड़ेगा करती थी। क्योंकि क्वेश्चन मार्क आ गया है मॉडर्न सिविलाइजेशन के, कुछ ऐसे काले करतूतों के कारण मां को कहा जाता था प्रेम मां करती है। बच्चे को सुखी देखना चाहती है, अपने सुख की परवाह नहीं है। काम का मतलब मुझे क्या सुख मिलेगा, दोनों में दिनों। तो भक्ति का अर्थ है प्रेम। तब अर्जुन प्रश्न क्या पूछता है, 12वां अध्याय शुरू होता है। इसमें दो पक्ष अर्जुन रखता है कि ये और ये दोनों में से आप बताइए कि आपको कौन सा सर्वश्रेष्ठ लगता है। दो पक्ष रखता है अर्जुन। वाच अर्जुन बोलता है एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम परियुपासते। पहला पक्ष है एवं। एवं का मतलब है अभी 11वें अध्याय में दो श्लोक पहले आप जो मुझे कह रहे थे, क्या मैंने कहा आपको, बोला आपने मुझे कहा था शक्य हो सकता है केवल अनन्य, क्या है अनन्य शक्य का ना शब्द क्या है, शक्य तो अहम विदो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। एक शक्त इसमें भक्ति शक्त तो है कहीं ना, शक्य से पहले आगे कोई एक शब्द है, क्या है, अनन्य भी शब्द साथ में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्त्या तो अनन्य शक्य, मैंने खोलने से पहले जब भगवान का नाम लिया तो आ गया। ये इस बात का प्रमाण है कि हरे कृष्णा मंत्र से सब कुछ मिल सकता है। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। तो अभी हमने जब जपा तो ये सोच के नहीं जपा था कि कीर्तन कर रहे, ये अपने आप हृदय से ऐसे मुख पे आ गया। तो जब ऐसे स्पॉन्टेनियस भगवान का नाम निकलने लगेगा तो सब चीजें जो न ज्ञात है वो भी ज्ञात हो जाएंगी। ये प्रमाण है भक्त्या तो अनन्य शक्य। जो अनन्य भक्त हैं उनके लिए ये हो सकता है, केवल उनके लिए ये होना संभव है। किसके लिए, भक्त्या तो अनन्य शक्य। शक्य का मतलब हो सकता है, उनके लिए ये संभव है उनके लिए। क्या, भक्त्या तो अनन्य शक्य अहम एवं विदो अर्जुन। अहम मेरे बारे में, एवं ऐसे जैसे मैं तुम्हारे सामने अभी खड़ा हूं ना, तुम मुझे बात कर रहे हो, विदो जान सकता है अर्जुन, ये अर्जुन जैसे तू मेरे को देख रहा है ना अभी इस वक्त, कृष्ण द्विभुज रूप में, जिसके लिए तुमने अभी कहा अर्जुन, मैंने क्या कहा अर्जुन, मानो अर्जुन पूछता है, आपने कहा ना तव सोमयम जनार्दन मानुषम रूपम, तुमने अभी कहा ना दो हाथ वाला तुम्हारा मानुष रूप जो अभी मैं देख रहा हूं, ये जनार्दन बहुत सौम्य है, बहुत शीतल है। ये केवल अनन्य भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। बोलो बस केवल जाना जा सकता है, ज्ञातुम, बोले जाना नहीं 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 जाना नहीं, ज्ञातुम दृष्टुम, जाना नहीं देखा जा सकता है, देखा जा सकता है तत्वेन, तत्व रूप से। बोले बस केवल देखा जाएगा, नहीं 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 परवेष्टुम च, प्रवेश भी इसके अंदर प्रवेश भी किया जा सकता है, प्रवेश किया जा सकता है का अर्थ यह है कि उसके साथ हाथ मिलाया जा सकता है, उसके साथ आलिंगन किया जा सकता है, उसका वर्ण किया जा सकता है। प्रवेष्टुम का अर्थ यह है कि उसके घर में चला जाके उसके साथ बैठ के भोजन किया जा सकता है, इसका भाव ये है। तो ज्ञातुम जाना जा सकता है, दृष्टुम देखा जा सकता है, और प्रवेष्टुम उसके साथ अपने संबंध स्थापित किया जा सकता है। ये भक्ति का, ये इसके बारे में अर्जुन पूछ रहा है कि आपने जो अभी कहा था ना एवं, एवं का मतलब ये श्लोक लेना पड़ेगा, भक्तिया तो अनन्य शक्य एवं सतत, सतत का अर्थ है सब समय, सब काल में, सतत का मतलब सब समय, सतत। इसको दो शब्दों को अगर अलग करेंगे ना, तत्, तत् शब्द से तार, तार जैसे नारद के वीणा में है तार, इससे इस ऐसे जब सतत का अर्थ करेंगे तो इसका अर्थ निकलेगा जो गा के बजा के बड़े स्वर में हर समय मेरा कीर्तन करता है, सतत का अर्थ ये हो जाएगा, छुप के नहीं बजा के गाकर तार के ऊपर नाच कर गाकर जो मेरा कीर्तन करता है। और फिर भागवत से इसका श्लोक मिलेगा, उद्गायंती नृत्यंती, नृत्य करते हैं बड़े स्वर में गाते हैं, ऐसा एक भी भक्त होता पुनाते भुवनम, पूरे भूमंडल को पवित्र कर सकता है, भागवत लिखती है। तो सतत का अर्थ है सदा के लिए सरे आम बाजार के बीच में खड़े होकर गाकर बजाकर मेरा मेरे मेरी क्या करता है, उपासना करता है, मेरे पास खड़ा होता है। एवं सतत युक्ता, सतत का मतलब सब समय सरेआम गा के बजा के नाच के जो मेरा कीर्तन करता है। सतत का, तत् का अर्थ है तार, तार का मतलब वीणा, जैसे नारद गाता है ऐसे खुलेआम कीर्तन जो करता है, सतत का अर्थ है हर समय कीर्तन करता है। सततम कीर्तन यंतो माम यतंतस्य दृढ़ व्रता, भगवान ने कहा सततम, सततम कीर्तन यंतो माम, तो ये सतत को सतत के साथ कीर्तन लगाएंगे तो सतत का अर्थ ठीक समझ में आएगा। सततम कीर्तन यंतो माम, माम का मतलब कृष्ण का सदा कीर्तन। एवं सतत युक्ता, युक्ता का अर्थ होता है जुड़ा हुआ, युगल जोड़ी कहते हैं ना, युगल और युक्त का अर्थ एक ही है, जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जिसका हाथ मेरे हाथ में है, जिसको मैंने पकड़ के रखा हुआ है, अथवा जिसने आपको पकड़ के रखा हुआ है। आप कैसे पकड़ के रखा हुआ है, आपके लिए काम करता है, आपको ही सर्वोच्च समझता है, प्रेम भी आपसे करता है। ये युक्त की तीनों तीनों अर्थ युक्त में आ जाएंगे, एवं सतत युक्ता ये, और ये का अर्थ है कोई भी, ये खुला निमंत्रण है, सन्यासी हो ब्राह्मण हो शूदर हो किसी देश का हो किसी काल होगा, ये का मतलब, ये शब्द कहने से पता लगता है कि ये भगवान का निमंत्रण है, कोई भी आ सकता है, कोई भी, ये का मतलब कोई भी, किसी को स्त्री को पुरुष को बच्चे को किसी को रुकावट नहीं है। ये एवं सतत युक्ता ये परियोपासते, परियो का मतलब है वो, सतत का अर्थ हुआ हर समय, और परिया का अर्थ है हर जगह, हर समय और हर जगह। हर जगह का अर्थ क्या हुआ, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां भगवान का स्मरण आप भुला दो। चेतन महाप्रभु की लीला में एक छोटी सी ये कहानी सबको याद होगी जो हमेशा आते हैं, महाप्रभु जब सोच जाते थे तो जवान को दांतों में दबा लेते थे। एक छोटा सा बालक था, गोपाल था उसका नाम। गोपाल ने बोला, ए महाप्रभु आप जवान को दांतों में क्यों दबाते? बोला, जवान कृष्ण कृष्ण कहने की इतनी आदी है कि सोच जैसे गंदी जगह पे जाता हूं तो भी कृष्ण कृष्ण करती है, तो मैं दांतों में दबा के रखता हूं। गोपाल बोलते महाप्रभु सोच में अगर प्राण निकल गए और मर गए तो। महाप्रभु कहते गोपाल तू मेरे गुरु हो। उस दिन के बाद उसका नाम हो गया गोपाल गुरु। और महाप्रभु ने कहा सोच में भी भगवान का नाम लेने का बाध्य नहीं है, बंद नहीं, नाम ले सकते हो। परियों का अर्थ है ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवान का नाम लेने की मना हो। परियों शब्द का अर्थ है सब जगह। उपासते, उपासते कहता उप का मतलब है निकट, आसते बैठता है आकर, परियोपासते का मतलब है जहां भी होगा मेरे पास ही बैठा रहेगा, मेरे से अलग नहीं रहेगा। वैसे उपासना का अर्थ होता है पूजा करना, तो पूजा करेगा तो अंदर जाएगा तब करे ना, भगवान के निकट जाएगा तब करे ना। पूजा का वस्त्र अर्पण करना है तो निकट जाएगा ना, निवेद्य अर्पण करना है तो निकट जाएगा ना, धूप अर्पण करना है तो निकट जाएगा ना। तो पूजा की सामग्री जब पास में जाएगा तब होगा। तो उपासना के लिए वेदी बनती है, एक पूजा वाले की वेदी होती है, एक भगवान की वेदी होती है, दोनों आमने सामने होते हैं, उसको उपासना बोलते हैं। उपास परियोपासते कहीं भी होगा भगवान की पूजा को भूलेगा नहीं। इसलिए सद्गुरु संत महात्माओं ने मानसिक पूजा का विधान किया है। कहीं भी है, मानो मंदिर में नहीं है, जहाज में जा रहे हैं, लेकिन मंगल आरती का टाइम होता है तो आंखें बंद करके भगवान को देखते हुए परियोपासते का अर्थ है उस वक्त पूरी मंगल आरती आप उधर बैठ के गाओ, देखो कि हम भगवान के सामने खड़े हैं। ये परियोपासते का भाव ये है। ऐसे नहीं है मंदिर में नहीं है तो हमारी छुट्टी हुई, चलो अब सो जाते हैं, कोई बात नहीं, मंगल आरती छूट गई, ये परियोपासते नहीं हुआ। वो समय जिस समय ये काम करना है उस समय कहीं भी हो तो उस चीज को वैसे करना, ये परियोपासते का अर्थ है। हर जगह और हर समय जो आपसे जुड़ा हुआ है, आपकी सेवा में लगा हुआ है, ये एक पक्ष। दूसरा पक्ष कौन सा है? एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम परियोपासते, भक्त जो ऐसे आपकी उपासना करता है। दूसरा क्या है? ये, अब दूसरा, ये का मतलब दूसरे, मतलब ये इसको छोड़ो, अब दूसरे वाले बोलो, दूसरे कौन से? ये च अप्य अक्षरम, जो आपको अक्षर ब्रह्म मानते हैं। अक्षर ब्रह्म मतलब निराकार, आपके किसी रूप को नहीं मानते हैं। रूप को उपासना तब करेंगे जब सामने कोई होगा, तब ना पूजा करेंगे। पूजा करेंगे मतलब उसको भोग अर्पण करेंगे, उसको वस्त्र आभूषण देंगे, तो तब जब रूप होगा तब करेंगे ना। रूप नहीं होगा तो ये चाप्य अक्षरम अव्यक्तम। ये आदमी आते हैं ना, आदमी को आप क्या बोलते हो? ये व्यक्ति कौन है? व्यक्ति बोलते हैं ना। अव्यक्तम का मतलब जिसको कोई व्यक्तित्व है ही नहीं, उसका व्यक्तित्व नहीं है, वो व्यक्त नहीं है, इसका मतलब वो देखने में नहीं आता है, उसको देखा नहीं जा सकता है। अक्षरम अव्यक्तम परियोपासते, उसका वो चिंतन करता है, उसी की वो उपासना करता है, दिखता नहीं है फिर भी उपासना करता है। तेषाम, इन दोनों में से के योग वित्मः, किसको आप सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? योग वित्मः का अर्थ है योगवित, योगवितर, योगवित्मः, जैसे अंग्रेजी में होता है ना गुड बेटर बेस्ट, तो योगवित का मतलब गुड, योगवितर बेटर, योगवित्मः बेस्ट, तो ये सुपरलेटिव संस्कृत की डिग्री है। जैसे गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान, तो यो विग में ये प्रश्न है अर्जुन का। और इसके उत्तर में भगवान एक श्लोक में पहले पक्ष का उत्तर देंगे, तीन श्लोक में दूसरे पक्ष का उत्तर देंगे, और फिर ये हो गए कितने श्लोक? एक का प्रश्न, दूसरे में उत्तर दो, तीन में दूसरे पक्ष का उत्तर पांच, बाकी 15 श्लोक, उसमें 11वें श्लोक तक, 5 से 11 तक कितने हो गए? 6, 7, 8, 9, 10, 11 कितने हुए? 6, 7, 8, 9, 10, 11 6 श्लोक, 6 श्लोकों में भक्ति की विधि, ये करो, नहीं कर सकता हूं तो ये करो, ये नहीं कर सकता ये करो, नहीं ये मुश्किल है, तो ये तो करोगे ना, तो ये करने से भी वही मिलेगा। हाँ भाई तुम ये करो, नहीं तो ये करो, नहीं तो ये करो। तो ये भक्ति के स्तर, ये कर सकते हो तुम, इसके योग्य हो तो ये करो, नहीं कर सकते ये करो, नहीं कर तो ये करो। ये बताने के बाद भक्त के लक्षण बताते हैं कि मुझे भक्त कौन सा प्रिय है। ऐसे 12वां अध्याय 20 श्लोक का छोटा है और ये भक्ति योग के नाम का अध्याय है। समय अभी का समाप्त हो गया। आने वाले सोमवार को यहां से आगे इस कथा को करेंगे, 12वें अध्याय का थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। बाकी जब दोबारा समय मिला भगवान ने बहुपात की कृपा हुई तो आगे इस 12वें अध्याय को समझने का प्रयास करेंगे। 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक का जाके भावार्थ पढ़ लेना और कुछ विशेष उसके आप बातें निकाल के लिखना कि आपको क्या समझ में आया। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछो, नहीं तो हरे कृष्णा। दस बीस के बाद कोई प्रश्न नहीं होता है, प्रसाद होते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।